एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एलिस श्रोडर की द स्नोबॉल, वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ। ये सिर्फ किसी की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें इन्वेस्ट, बिजनेस और जिंदगी जीने के बड़े गहरे सिद्धांत छुपे हैं।
हाँ, बिल्कुल सही कहा। वॉरेन बफेट का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अक्सर शेयर बाजार आता है, पैसा आता है, लेकिन ये किताब मतलब सिर्फ उनको एक निवेशक की तरह नहीं देखती, ये उनके चरित्र, उनकी सोच, उनके जो मूल्य थे, उनकी गहराई में जाती है, और शायद वही उनकी सफलता का असली राज है।
और इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी कहानी आज भी इतनी जरूरी है। ये सिर्फ पैसे बनाने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि वो जो चक्रवृद्धि या कंपाउंडिंग का सिद्धांत है ना।
हाँ हाँ स्नोबॉल वाला।
हाँ, वही। उसे जीवन के हर पहलू में, चाहे वो ज्ञान हो या आपकी साख हो, रिश्ते हो, उसमें कैसे लागू करें, इसकी प्रेरणा देती है। ये तर्कसंगतता और मतलब लंबी सोच रखने का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है।
और एलिस श्रूडर वो खुद वॉल स्ट्रीट की जानी मानी एनालिस्ट्स थीं। उनको बफेट तक मतलब कमाल की पहुंच मिली थी। हजारों घंटे बात की, उनके निजी कागज देखे, परिवार वालों से, दोस्तों से मिली। इसी वजह से ये किताब इतनी सच्ची और इंसाइटफुल लगती है।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये सफर। देखते हैं कि ओमाहा का एक लड़का कैसे दुनिया का सबसे कामयाब निवेशक बना, और ये स्नोबॉल ये कैसे बढ़ता ही चला गया।
बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 1930 के ओमाहा, नेब्रास्का से। महामंदी का दौर था, बचपन से ही मतलब अंकों से, बिजनेस से लगाव था। छोटी उम्र में च्युइंग गम बेचना, कोका कोला की बोतलें बेचना, ऐसे छोटे मोटे काम करके पैसे बनाने और जोड़ने का जुनून था। पर शायद सबसे बड़ा असर उनके पिता हॉवर्ड बफेट का रहा।
हॉवर्ड बफेट वो स्टॉक ब्रोकर थे और बाद में कांग्रेस सदस्य भी बने। उन्होंने क्या सिखाया बफेट को, कुछ खास?
दो बहुत बड़ी चीजें, एक तो ईमानदारी और दूसरी जो शायद सबसे अहम थी, वो थी आंतरिक स्कोर कार्ड की सोच।
आंतरिक स्कोर कार्ड, ये क्या होता है?
इसका मतलब है कि आप खुद को अपने पैमानों पर तौलें, न कि इस आधार पर कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है या कहती है। दुनिया की तारीफ या आलोचना से ज्यादा जरूरी ये है कि आप खुद अपने काम और अपने सिद्धांतों से कितने संतुष्ट हैं। और ये सोच बफेट के हर बड़े फैसले में झलकती है।
दिलचस्प। और फिर वो किताब आई जिसने उनकी प्रोफेशनल जिंदगी की दिशा ही बदल दी, बेंजामिन ग्रहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर।
बिल्कुल, वो उनके लिए जैसे कोई रेवलेशन था। उस किताब ने उन्हें निवेश का एक तर्कसंगत, डिसिप्लिन तरीका दिया। वो ग्राहम से इतने प्रभावित हुए कि कोलंबिया बिजनेस स्कूल चले गए सिर्फ उनसे पढ़ने के लिए। बाद में उनकी फर्म ग्राहम न्यूमन कॉरपोरेशन में काम भी किया, और वहीं उन्होंने वो सिगार बट स्टाइल सीखी।
सिगार बट, ये कैसा नाम है?
हाँ, मतलब जैसे कोई फेंका हुआ सिगार का टुकड़ा हो जिसमें बस एक आखिरी कश बचा हो। ऐसी कंपनियां ढूंढना जो बहुत बहुत सस्ती मिल रही हो, भले उनका बिजनेस कोई खास न चल रहा हो। सस्ता खरीदो, थोड़ा सा मुनाफा कमाओ और निकल जाओ। ये शुरुआती स्टाइल थी।
अच्छा, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहे। 1956 में ओमाहा वापस आकर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप शुरू की।
हाँ, और वो भी बड़ी अनोखी शर्तों पर। कोई मैनेजमेंट फीस नहीं, बस एक शर्त थी, अगर वो निवेशकों को साल में 6% से ज्यादा रिटर्न दिला पाए तो उस एक्स्ट्रा मुनाफे का एक हिस्सा उनका होगा। मतलब उनके और निवेशकों के हित पूरी तरह एक हो गए। और कमाल के रिटर्न्स दिए उन्होंने, लगातार बाजार को पीछे छोड़ा।
लेकिन फिर 1969 में, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बाजार भी ऊंचाई पर था, उन्होंने अचानक अपनी पार्टनरशिप बंद कर दी। ये तो बड़ा अजीब फैसला लगता है, कोई क्यों करेगा ऐसा?
यही तो बफेट का अनुशासन और वो आंतरिक स्कोर कार्ड का सबूत है। उन्हें लगा कि बाजार में अब समझदारी से पैसा लगाने के मौके नहीं बचे हैं, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। तो भले ही वो सफलता के शिखर पर थे, उन्होंने ईमानदारी से निवेशकों का पैसा वापस कर दिया। ये दिखाता है कि वो भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं थे, अपने सिद्धांतों पर टिके रहे।
पार्टनरशिप बंद करने का ये अनुशासन, शायद इसी वजह से वो बर्कशायर हैथवे जैसी स्थिति को अलग नजर से देख पाए। एक डूबती हुई कंपनी में एक मौका।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बर्कशायर हैथवे उस वक्त एक मुश्किलों में फंसी टेक्सटाइल मिल थी। शुरू में तो ये भी एक सिगार बट जैसा ही निवेश था, लेकिन बफेट ने ये किया कि टेक्सटाइल बिजनेस से जो भी पैसा आता था उसे दूसरी कंपनियां खरीदने में लगाया, खास तौर पर बीमा कंपनियां। और यहीं उन्हें बीमा के फ्लोट की ताकत का अंदाजा हुआ।
ये फ्लोट, इसका जिक्र बहुत होता है। कहते हैं ये बफेट की सफलता का सीक्रेट सॉस है। ये है क्या आखिर?
देखिए, बीमा कंपनियां प्रीमियम तो पहले ले लेती हैं, लेकिन क्लेम का पैसा बाद में देती हैं, है ना? तो इस बीच जो पैसा उनके पास रहता है उसे फ्लोट कहते हैं। वॉरेन बफेट ने ये समझा कि अगर बीमा का कारोबार ठीक से चलाया जाए, मतलब घाटे में न हो, तो ये फ्लोट एक तरह से मुफ्त का पैसा है और ये लगातार आता रहता है, बढ़ता रहता है। इसे वो निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। बर्कशायर हैथवे इसी फ्लोट के दम पर एक बहुत बड़ी निवेश कंपनी बन गई। ये सिर्फ स्टॉक चुनने का कमाल नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर बनाने की प्रतिभा थी।
और यहीं पे चार्ली मंगर की भूमिका आती है, जिन्होंने बफेट की सोच को और आगे बढ़ाया।
हाँ, निश्चित रूप से मंगर ने बफेट को ग्राहम वाली सिगार बट सोच से, मतलब सिर्फ सस्ती चीजें खरीदने वाली सोच से आगे बढ़ाया। मंगर ने कहा, एक ठीक ठाक कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है कि एक शानदार कंपनी को ठीक ठाक कीमत पर खरीदो।
अच्छा, मतलब फोकस क्वालिटी पर आ गया?
बिल्कुल, फोकस अब सिर्फ सस्तेपन पर नहीं, बल्कि कंपनी की क्वालिटी, उसका टिकाऊ कंपेटिटिव एडवांटेज, जिसे बफेट मोट यानी किले के चारों ओर की खाई कहते हैं, उस पर आ गया। जैसे सीज कैंडीज का अधिग्रहण, एक बेहतरीन ब्रांड जिसके लिए ग्राहक ज्यादा कीमत देने को तैयार थे, ये मंगर के प्रभाव का नतीजा था।
और इसके बाद तो बर्कशायर ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट, कई बड़ी और कामयाब कंपनियों में निवेश किया और बफेट बन गए ओमाहा के ओरेकल। उनके वो सालाना शेयरहोल्डर लेटर्स भी बहुत मशहूर हुए।
हाँ, वो लेटर्स सिर्फ कंपनी की रिपोर्ट नहीं होते थे, वो निवेश और बिजनेस की फिलॉसफी पर जैसे मास्टर क्लास होते थे। बिल्कुल सरल भाषा में, अपनी गलतियां मानते हुए, वो लाखों लोगों को एक तरह से तर्कसंगत सोच सिखा रहे थे। और फिर वो सोलोमन ब्रदर्स वाला मामला आया 1991 में।
हाँ, जब उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला था।
बिल्कुल, वो उनकी ईमानदारी और लीडरशिप की बड़ी परीक्षा थी। और आखिर में 2006 में जब उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत दान करने का फैसला किया, वो भी उनके जीवन के सिद्धांतों को ही दिखाता है।
उन्होंने ये क्यों किया, मतलब इतना बड़ा दान?
उनका तर्क बड़ा सीधा था, बोले, पैसा कमाना मेरा काम है, मेरा कौशल है, उसे बांटना, उसका सही इस्तेमाल करना, वो दूसरों का कौशल है। तो उन्होंने दौलत को तब तक बढ़ने दिया जब तक वो अधिकतम हो गई, और फिर उसे उन लोगों जैसे गेट्स फाउंडेशन को सौंप दिया जो उसे सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक तरह की तर्कसंगतता ही थी।
तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, उनके पूरे जीवन को, तो उनके दर्शन, उनके मूल सिद्धांत क्या निकल कर आते हैं? ये सिर्फ निवेश के टिप्स तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ बातें हैं जो बार बार दिखती हैं। पहला तो वही चक्रवृद्धि की शक्ति, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये स्नोबॉल वाला आइडिया। पैसा, ज्ञान, आपकी साख, सब कुछ लगातार धैर्य के साथ किए गए काम से बढ़ता है। दूसरा, आंतरिक स्कोर कार्ड। बाहर दुनिया क्या कहती है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सिद्धांतों पर कितने खरे उतरते हैं। इसी से आपको भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत मिलती है, मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत मिलती है।
तीसरा
है क्षमता का दायरा, यानी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सिर्फ वही काम करो, उसी क्षेत्र में निवेश करो जिसे आप अच्छी तरह समझते हो। ये जानना कि आप क्या नहीं जानते, ये भी एक तरह की होशियारी है, बौद्धिक विनम्रता है। शायद इसीलिए वो टेक बबल जैसे दौर से बच निकले।
लेकिन क्या इससे मौके छूटने चाहते, अगर आपसे वही करेंगे जो आप जानते हैं?
हाँ, शायद छूटते हैं, लेकिन बफेट मानते थे कि जो नुकसान आप ना समझ आने वाली चीजों में घुसकर उठाते हैं, वो उन छूटे हुए मौकों के फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। फिर एक और अहम सिद्धांत है, तर्कसंगतता और स्वभाव। उनका मानना था कि तेज दिमाग, IQ से ज्यादा जरूरी है सही मिजाज, टेम्परमेंट, डर और लालच जैसी भावनाओं पर काबू रखना,
और धैर्य।
हाँ, धैर्य और लंबी सोच, उनका पसंदीदा होल्डिंग पीरियड, हमेशा के लिए। शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, उस पर ध्यान मत दो, कंपनी के बिजनेस पर, उसकी लंबी अवधि की संभावनाओं पर ध्यान दो। और आखिर में विश्वास और प्रतिष्ठा। वो कहते थे ना, इज्जत बनाने में 20 साल लगते हैं और गंवाने में 5 मिनट। ईमानदारी सिर्फ नैतिक बात नहीं, ये एक बिजनेस एसेट है।
हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल लेते हैं। बफेट के जीवन में ऐसे 3 सबसे अहम मोड़ कौन से रहे होंगे?
मेरे हिसाब से पहला और सबसे बुनियादी मोड़ था बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ना। इसने उन्हें निवेश के लिए एक मजबूत, तर्कसंगत आधार दिया, एक ढांचा दिया, ये उनकी नींव थी।
अच्छा, और दूसरा?
दूसरा बड़ा मोड़ था बर्कशायर हैथवे को खरीदना और फिर उसमें बीमा के फ्लोट की ताकत को पहचानना और इस्तेमाल करना। इसने एक लगभग बेकार पड़ी टेक्सटाइल मिल को एक ऐसी मशीन में बदल दिया जो लगातार पैसा बनाती थी, जिसे वो फिर से निवेश कर सकते थे। इसी से चक्रवृद्धि का जादू असल में शुरू हुआ। ये उनका इंजन था।
और तीसरा, जिसने शायद उनके निवेश के तरीके को और बेहतर बनाया।
हाँ, वो था चार्ली मंगर के साथ उनकी साझेदारी और उसके बाद उनके निवेश दर्शन का विकास। मंगर ने उन्हें सिर्फ सस्ता ढूंढने से आगे बढ़कर अच्छा ढूंढने और उसकी सही कीमत देने की समझ दी, यानी क्वालिटी पे फोकस। इसने उनके निवेश के दायरे को और उनकी सफलता को बहुत बड़ा बना दिया। ये उनका एक तरह से अपग्रेड था।
ये कहानी सिर्फ बिजनेस या पैसे की नहीं है, इसमें हम सबके लिए, मतलब आम इंसानों के लिए भी सीखने को बहुत कुछ है।
हाँ, बिल्कुल है। पहला सबक तो यही है कि सिद्धांतों पे टिके रहने का क्या महत्व है। वो आंतरिक स्कोर कार्ड वाली बात, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मुश्किल फैसलों के वक्त वही आपका साथ देता है। दूसरा, धैर्य की ताकत। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लेकिन बफेट की कहानी दिखाती है कि लंबा खेल खेलने की क्षमता, इंतजार करने की काबिलियत एक सुपर पावर है। उनकी ज्यादातर दौलत तो 50-60 साल की उम्र के बाद बनी।
और लगातार सीखते रहना।
हाँ, तीसरा सबक वही है, निरंतर सीखना। बफेट आज भी अपना ज्यादातर वक्त पढ़ने में बिताते हैं। ज्ञान भी तो चक्रवृद्धि होता है ना, जैसे पैसा होता है।
लेकिन किताब एक और पहलू भी दिखाती है कि इस जबरदस्त फोकस की, इस असाधारण सफलता की एक मानवीय कीमत भी होती है।
हाँ, श्रूडर ने इस बात को ईमानदारी से रखा है। उनके काम पर इतना ज्यादा ध्यान था कि उसका असर उनके निजी रिश्तों पर, खासकर परिवार पर पड़ा। उनकी पत्नी सुसान के साथ उनके संबंध काफी जटिल थे, बच्चों के साथ भी कुछ हद तक एक दूरी रही। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन के किसी एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अक्सर दूसरे क्षेत्रों में कुछ त्याग करना पड़ता है। ये सफलता के साथ आने वाले समझौते हैं।
तो इस पूरी बातचीत के अंत में अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हो जो श्रोता अपने साथ लेकर जा सकें, तो वो क्या होंगी?
ठीक है, पहली शायद एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, वो ये कि असाधारण सफलता, खासकर जब वो इतने गहरे फोकस से आती है, तो उसकी अक्सर एक मानवीय कीमत होती है, रिश्तों में, निजी जीवन में। जीवन में संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है और उत्कृष्टता के लिए कभी कभी बलिदान देने पड़ते हैं।
और दूसरी, कोई बौद्धिक सीख?
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, लंबी अवधि में सफल होने के लिए सिर्फ तेज दिमाग होना काफी नहीं है, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है सही स्वभाव, भावनात्मक स्थिरता और तर्कसंगतता। मतलब बाजार के शोर में या अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहना जाना, अपने आंतरिक स्कोर कार्ड पर टिके रहना, ये असली कुंजी है।
और आखिरी, एक सार्वभौमिक सिद्धांत जो सब पर लागू हो?
एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, वो स्नोबॉल इफेक्ट या चक्रवृद्धि का सिद्धांत। ये सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होता, ये ज्ञान पर, आपके कौशल पर, आपकी सेहत पर, आपके रिश्तों पर, आपकी साख पर, सब पर लागू होता है। लगातार धैर्य के साथ सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहने से समय के साथ बहुत बड़े आश्चर्यजनक नतीजे मिल सकते हैं। सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी के किन हिस्सों में अपना स्नोबॉल बना रहे हैं और उसे लुढ़का रहे हैं।
ये सोचने वाली बात है, हम अपने ज्ञान का, अपनी आदतों का, अपने रिश्तों का स्नोबॉल कैसे बना सकते हैं। बहुत खूब,
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।